നമോസ്കാരം നമോ ആയിരിയാടം നമോ ഉപഛായാടം നമോ ലോയ സപ്തസാഹൂഢം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോഗരി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാസ്യോ ജൈനധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗളമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം സദാനാം സർവധർമാണാം ജയം ജയതു ശാസ്ത്രം ജയം ജയതു ശാസ്ത്രം ജയം ജയതു ശാസ്ത്രം തീനോ ഭുവന മേ സാത് ദീപ രാഗ ഹേ ജ്ഞാന കാ ശിവ സ്വരൂപ ശിവ കാത് हम सब छेड़ाला की तीसरी ढाल पर हैं और हमने बंध तत्व संबंध में चार प्रकार के बंधों की चर्चा पिछली बार करी थी। किसी को कोई क्वेश्चन है उसमें से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध।
नहीं
ओके हाँ, तो योग और कषाय ये दो मूल बंध के कारण हैं। योग से कर्म बस आते हैं, उससे स्थिति और अनुभाग नहीं बनता, मतलब कर्म ठहरते नहीं है। और अकेले योग हो तो ईर्ष्यापथ आश्रम होता है जो अरहंत केवली को होता है। योग के साथ कषाय भी हो तो कर्म की स्थिति अनुभाग भी बंद होता है प्रकृति प्रवेश बंध के साथ। और ये सांप्रदायिक आश्रम है, ये हमारे संसारी छद्मस्थ जीवों के ये वाला आश्रम होता है। ठीक है,
अनुभव जी, इट मे नॉट कम्प्लीटली रिलेट टू दिस वन बट we were learning about Nishkriyatva Shakti Vigaya. So we are just doing Shaktis in the morning. So usme kya hai ke, like jahan yog ka aata hai na, ke yog se kampan hota hai. So my question came up ke jo rotate hote hai pradesh atma ke, to wo उससे कुछ योग का कम उसका उससे योग का कुछ रिलेशन है कि नहीं?
हाँ, असली वो जो आत्मा के प्रदेशों का रोटेशन हो रहा है उसी को योग शक्ति कहते हैं। दैट इज दैट मैग्नेटिक फोर्स जो कि बाहर के कर्मों को अट्रैक्ट करती है।
तो वो उसको एक कंपन बोलेंगे?
हाँ हाँ हाँ, उनका रोटेशन ही कंपन है।
ओके, क्योंकि वो सभा में सब बोलते कि नहीं वो योग इज डिफरेंट और ये रोटेशन इज डिफरेंट, वैसा तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट
योग मतलब आत्मा की कर्म को ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, ये वाली शक्ति किस कारण होती है? जब तीन बाहर पर एक्सटर्नल योग हैं जिनको हम तीन बल कहते हैं, मन वचन काय, ये सब व्यवहार से योग कहलाते हैं। ये तो बाहर के एक्सटर्नल बॉडी के फंक्शन है। आप बोल पा रहे हैं, बॉडी का फंक्शन है। आपके पास बॉडी है, वो बॉडी का फंक्शन है। और आप सोच पा रहे हैं, वो भी मन है, द्रव्य मन, फिजिकल। ठीक है, ये तीन तो एक्सटर्नल हो गए, इनसे तो आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब भी हम इन तीनों का यूज करने जाते हैं तभी आत्मा में, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता ही है, नेसेसरीली होता है। और आत्मा के प्रदेशों के कंपन को ही योग कहते हैं। और क्योंकि वो योग, वो कंपन इनके कारण हो रहा है, इसलिए इनको भी योग नाम उपचार से कह दिया जाता है। तो ओरिजिनली तो यही है कि आत्मा के प्रदेशों में जो रोटेशन हो रहा है, वो घूम रहे हैं, जो कंपन हो रहा है, वो ही सच्चा योग है। क्योंकि वो ही एक मैग्नेटिक फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है कार्मिक डस्ट को, वो कर्म उसके कारण आ रहे हैं। तो जब आत्मा योग का प्रयोग छोड़ देता है 14th गुण स्थान में, वो अयोगी हो जाता है, तब उसके कर्मों का आना भी बंद हो जाता है।
तो दैट मीन्स के स्थित अवस्था में रोटेशन बंद हो गया।
हाँ
राइट हाँ। अभी अभी दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि धवला का, मैंने तो कभी धवला खोले भी नहीं है के नहीं है, परंतु बोलते कि धवला में आता है कि जो ये रोटेशन होता है तो उसके हिसाब से हमें वो अगर पैर में भी कुछ लगा तो वो जानने में आता है ये रोटेशन के हिसाब से। तो वो मुझको थोड़ा सा कि अभी आप बोलते हैं कि योग इज रोटेशन, तो वो को ये तो फिर ये जानने में तो और जो निश्चित जो वो बोलते कि उसके ये रोटेशन के हिसाब से हमको जानने में आता है, तो केवल ज्ञानी तो भी जानते हैं उसका, तो अभी योग का कंपन के वो नहीं है, तो वो एकदम मुझको समझ में नहीं आता है। आई डोंट नो इफ यू वन इफ आई मेड माय क्वेश्चन क्लियर आपके हिसाब से के।
यस 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये क्वेश्चन इज के उसमें ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता उसमें कहाँ लिखा है ये कि प्रदेशों में कंपन होता है, इसके कारण हम जानते हैं। देखिए
वो बोलते हैं
जानना,
अगर आप देखना धवला में के कहाँ हो
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ,
यू चेक लेटर अभी फिर कभी बताना।
हाँ हाँ मैं फिर कभी मैं एक बार चेक कर लूंगा उसको।
एग्जांपल है कि पैर में, अगर एग्जांपल पैर का लिया है वैसा मुझे बोला गया था।
हाँ तो जानने के लिए कंपन नहीं चाहिए, जानने के लिए तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण गुणों से कहते हैं जो आत्मा के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाएगा, उसे गुण कहते हैं। एट्रीब्यूट इज समथिंग दैट इज स्प्रेड ओवर इन ऑल पार्ट्स ऑफ दैट सब्सटेंस एंड एट ऑल टाइम्स, उसमें हमेशा रहे।
बराबर
राइट
करेक्ट।
तो हमको इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा पैर में लगे होने के कारण कि वहां के प्रदेश घूमकर ऊपर आएंगे और ज्ञान तक पहुंचेंगे, वहां पर ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है।
करेक्ट
करेक्ट। तो उससे ही जानेंगे, लेकिन हाँ जब भी आपको पैर में लगेगी आपके प्रदेशों में कंपन जरूर होगा, क्योंकि पैर इज बॉडी, वो काय योग है, काय योग के निमित्त से मतलब उसमें हलन चलन से आपके बॉडी के प्रदेशों में, आपके आत्मा के प्रदेशों में भी नियम से कंपन होगा, क्योंकि जब भी मन वचन या काया इन किसी का भी हमारे प्रयोग होता है तब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता ही है।
यहाँ पता क्या क्वेश्चन है,
करेक्ट करेक्ट। आप ये बोल रहे हैं कि उस कंपन के कारण हम जान पा रहे हैं
कि ज्ञान तो सारे सारे बॉडी में है ना, तो वहाँ ही लगा और वहाँ ही क्यों हमको ऐसा लगा कि वहाँ ही ज्ञान वहाँ ही जानने में आया।
अरे वो तो स्पर्श, वो तो वो, नहीं 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 ये तो ज्ञान की स्वच्छता है ना, जैसे कि हम आईने के सामने खड़े हुए और मेरे सिर्फ सिर पर थोड़ा सा काला गंदगी लगी हुई है थोड़ी सी, तो ज्ञान को सिर्फ गंदगी सिर पे ही क्यों दिख रही है और पूरे चेहरे में क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि वो वही लगी है। ऐसे ही ज्ञान को इतना क्यों पता पड़ रहा है कि पैर में ही दर्द हो रहा है और कहीं क्यों नहीं पता पड़ रहा, क्योंकि वही हो रहा है, ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, ये तो ज्ञान जान रहा है। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ उसमें क्या प्रकरण रहेगा, फिर
तो
मैं मे बी उसके इंटरप्रिटेशन में शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया हो।
हाँ, मेरे मेरे क्योंकि मैंने लिखा
नहीं, नहीं वो जो वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहे हो शायद उन्होंने भी कुछ वो और कुछ कहना चाह रहे हो मे बी, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का कंपन उसका सिर्फ लेना देना योग से है, मतलब मन वचन काया से है। यदि ये तीन होते हैं तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा ही, चाहे वह अरहंत भगवान की आत्मा क्यों नहीं हो, जब वो भी दिव्य ध्वनि देंगे तो उनके भी आत्मा के प्रदेशों में कंपन रहेगा,
बराबर
राइट right? हाँ. तो और सिद्ध भगवान के नहीं है, क्योंकि उनके तीन योग उन्होंने योग का अभाव कर दिया है. अब उस योग से जानने का क्या लेना देना है, वो एक बार मैं उत्तर देख कर आपको बताता हूँ. मैं वहां भी पढ़ लेता हूँ एक बार.
नहीं,
आप
फिर देख
लेना. हाँ 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 बात में ठीक है.
परंतु क्योंकि ये योग कंपन और रोटेशन, तो अभी मुझे थोड़ा लाइक आई फील बेटर कि क्योंकि वो मुझे बहुत कठिन, और मैंने पूछा परंतु मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिला था किसी से.
ओके ओके. नहीं, अभी के लिए एज ऑफ नाउ यहाँ के प्रकरण में तो इतना ही है कि जब भी आप मन वचन काया का संपर्क करोगे, जब भी आत्मा उसके संपर्क में आएगा, तब तब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा और तब तब कर्मों का आश्रव होगा ही. अब क्वेश्चन बस ये रहेगा कि वो सांप्रदायिक आश्रव होगा कि इरियापथ आश्रव. इरियापथ आश्रव है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब हम सर्वज्ञ हैं, हमारे अरहंत हैं. लेकिन यदि हम वो नहीं है तो फिर दिक्कत है. दिस इज अ प्रॉब्लम देन. ठीक है.
हाँ.
ओके. अब आगे आगे हम देखते हैं इसमें. जीव प्रदेश बंधे विधिसों सो बंधन कबहू न सजिए. पहले उसके पहले क्या बोला, आश्रम का उपदेश किया था कि मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा. ये तो आश्रव है, और ये आश्रव क्या है, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए. ये जो आश्रव है ये ही आत्मा को दुख का कारण है, इसलिए इसको तजना चाहिए. अब कोई बताएगा आश्रव तत्व संबंधी भूल, यदि कोई बताए मुझे तो. आश्रव तत्व दूसरी ढाल में हमने पढ़ी थी, आश्रव तत्व संबंधी भूल. आश्रव तत्व के संबंध में
जो हाँ, जो राग द्वेष होते हैं
हाँ,
वो मेरे हैं.
हाँ,
तो वो क्योंकि वो मेरे से भिन्न है तो
हाँ हाँ तो राग द्वेष. हाँ, तो इसमें भूल क्या हो गई,
मेरा स्वभाव निराकुल है और ये आकुलता वाले हैं,
और ये इसको आकुलता वाले नहीं दिखते. रागादि प्रगट जे दुख देन तिविही को सेवक जिनक चैन. जो राग द्वेष प्रगट में ही दुख देने वाले हैं, आत्मा के सुख स्वभाव से विपरीत है, जिनको करने से हम अभी ही व्याकुलित हो जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं, ऐसे राग द्वेष ये जो प्रगट में दुख देने वाले हैं, इनको हम सुख का कारण देना वाला मानकर इनको सेवते हैं, इनको करते हैं. जैसे कि अभी क्रोध जैसे मैं कर रहा हूँ, तो क्रोध तो मुझे प्रगट में ही अभी दुखी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो सामने वाला मानेगा कैसे, गुस्सा तो करना ही चाहिए, राइट right? या फिर इफ आई एम डूइंग बिजनेस और चीटिंग सामने कर रहे हैं तो हम सामने ही इतने आकुलित हैं, और एनीथिंग, हम यदि अपने राग कर रहे हैं घर में तो उसके कारण हम परेशान हैं, बट हमको ये लगता है कि नहीं ये तो हो गई, अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो घर में तो ऐसा होता ही है, हम अभी मुनि थोड़ी बन गए हैं. सो वॉट एवर वी डू वी ट्राई टू जस्टिफाई, हम उसको कर्तव्य मानकर चलते हैं. तो रागादि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन. तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं तीसरी ढाल में भी कि ये जो आश्रव है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय यानी मोह राग द्वेष सिंपली, ये आत्मा को दुख के कारण है, इनसे आत्मा को दुख होता है, इनसे आत्मा को दुख होता है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए, इनको कर्तव्य मानकर नहीं करना चाहिए। हेलो,
हाँ 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 जी हाँ
राइट। जैसे कि आप देखिए भूल क्या होगी, डूइंग समथिंग अपोजिट विच इज टेरिबली, ठीक है। तो हम वो फेमस एग्जांपल लेते हैं कि वी आर ऑन अ बोट, हम नाव पर हैं और नाव पर होल्स होने लगे, छेद होने लगे, ठीक है, एंड अब पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो नाव में छेद होना अच्छी चीज है या बुरी चीज है?
बुरी चीज है,
बुरी चीज है। तो आइडियल वे में एक जो आदमी जो बैठा हुआ है नाव में, यदि वो अपने होशोहवास में है तो वो क्या करेगा, वो होल्स को बंद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या भूल हो गई आश्रव तत्व संबंधी, यही थॉट की नहीं नहीं ये तो अच्छे हैं नाव के तैरने के लिए, होल्स आर गुड, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग, अरे एक ही होल है एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। सो ही इज मेकिंग मोर होल्स एंड थिंकिंग दैट इट वुड बेनिफिट हिम। ऐसे ही आत्मा के लिए कर्मों का आना दैट वॉज डेंजरस, पानी का जैसे नाव में आना वॉज डेंजरस, एंड दैट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द होल ऑफ राग द्वेष, कि आत्मा क्रोध मान माया लोक करता है राग द्वेष करता है, तो कर्म आ रहे थे। बट नाउ भूल ये हो गई कि इसको लगा नहीं नहीं जितना अच्छे से हम राग द्वेष करेंगे उतना अच्छे से आत्मा सुखी हो जाएगा, द मोर बेटर वी कैन सोशलाइज वी कैन बिहेव वी कैन एडजस्ट टू सोशल नॉर्म्स, जितना अच्छे से हमको दुनिया को चलाने के बारे में पता होगा, द मोर पीपल स्मार्ट वी विल गेट द मोर बेटर इट वुड बी फॉर अस। तो इट्स द सेम एनालॉजी कि जिससे हमारा बेनिफिट नहीं है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हम उसको करते करते ये मानते कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस, ये उसकी भूल है। जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण मानकर उनकी सेवा मतलब उनको करता है, राइट
या
मतलब जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई मुझसे किसी ने मेरी इंसल्ट सामने, हाँ मतलब लाइक समबडी डिड समथिंग टू मी, सो वी हैव लाइक आपको पता है कि चलो किसी ने भी आपको कुछ बुरा बोला है तो यू नो ही हैज इंसल्टेड यू, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उससे भी कुछ बोलो, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप कैसे एकदम शांत रह सकते हो, हाउ कुड यू लिसन टू ऑल दैट ही सेड, आपने क्यों कुछ नहीं बोला। सो एवरी टाइम वी आर ऑलवेज एनकरेज्ड टू यू नो टेक अ स्टेप फर्दर इन राग द्वेष, कभी हम उसको समता से सौम्यता से लेने का प्रयत्न नहीं करते, क्यों, ये हमको लगता है कि इट इज नाउ अवर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड बैक टू व्हाट हैज कम टू अस, एंड दैट ड्यूटी उसको ड्यूटी मानना, उसको अपना कर्तव्य मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, ठीक है।
और लौकिक में हर हर जगह ये ही तो उपदेश हमको मिलता है,
वही वही मैं बोल रहा हूँ कि ये हाँ। इसलिए ये भूल है, यदि हाँ। सही कर रहे होते तो इसको भूल नहीं कहते, तो भूल इज ऑलवेज अपोजिट, सो यू वर सपोज टू क्लोज डाउन द ओपनड होल्स जो ऑलरेडी हो गए उनको बंद करो, एंड नॉट डेफिनेटली कि आप नए होल्स करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घाटा नहीं है, इट्स ओनली गोइंग टू मेक योर ओन बोट सिंक, और किसी की नाव नहीं डूब रही है ऐसे में। तो ये आश्रव तत्व इसलिए ये ही आत्मा को दुख के कारण है और इसलिए इनको सजना चाहिए, ठीक है। तो सी वेरी थिन लाइन की एक बहुत ही ज्यादा पुअर पर्सन है, बहुत गरीब आदमी है, एंड यू नो समहाउ ही मेट अ गाय जो कि वेरी मिस्चीवियस, बहुत ज्यादा वो चीट है एकदम, राइट। सो ही सेज कि चलो आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे देता हूँ, टू दैट पुअर गाय, आई विल गिव यू अ कार, आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट, राइट। बट ऑल दैट ही इज गिविंग एज अ लोन, ठीक है। जैसे आजकल एवरीथिंग इज वेरी वेरी फीजिबल, यू गेट, यू जस्ट पे द डाउन पेमेंट, यू गेट इट ऑन EMI, एवरीथिंग, फोन, कार, होम, हर चीज एकदम EMI पर है, वेरी इजी टू हैव एवरीथिंग, एंड इट्स अ वेरी डार्क बिजनेस एक्चुअली। सो यू लुक एट दिस बिजनेस द वे इट इज ग्रोइंग अप ऑफ EMI एंड लोन, इट्स वेरी डार्क बिजनेस फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड इट, राइट, बिकॉज इट लुक्स सो ईजी कि यार चलो सब अच्छा हो जाएगा, कितना ईजी टू अर्न इट, बट द मोमेंट यू टेक इट, इट बिकम्स अ परमानेंट हेडेक। नाउ इफ यू डू नॉट अर्न दैट मच टू मेक अप फॉर योर EMIs, आप यू आर जस्ट बिल्डिंग दैट अप। तो जब तक आप इसको समझना, ये समझते हो कि कितना ईजी और कितना आसान सब कुछ हो गया है एक गरीब आदमी हो, क्या पुअर पर्सन, when he thinks ke, oh, I'm getting so easily money, I got 1 lakh rupees just like that, theek hai, usko aise hi mil gaye, so he's thinking that it's so good he got the money, but that's his stupidity, he's not understanding that he did not get it for free, he'll have to pay it back. To Ashraf ki bhool yehi hai ki hum bhavishya ka chhod dete hain, हम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाते हैं और देखते हैं यार हमें इतने अच्छे विषय मिले, देयर इज सच अ नाइस थिंग दैट इज हैपनिंग टू अस राइट नाउ, बट उसी टाइम पीछे जैसे ही ये वाले आश्रफ की भूल होती है, बंद तत्व आता है पीछे से रन करता हुआ, एंड देन इट सेज ओके नाउ दैट यू हैव टेक,
हिंदी में बोले,
हाँ हाँ
हिंदी में बोलिए ना भाई साहब,
ओके 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 ओके, हाँ। तो जब वो फिर वापस हमको जब रियलाइज होता है कि हमने ले लिया वो लोन, एंड जब उसको चुकाना पड़ता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, बहुत अच्छी एक भूधर दास जी कवि ने ये एक दो लाइन्स लिखी है, उन्होंने बोला है, काना कानी कौड़ी विषय सुख, भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं छूटी है लेशक दाम उधार। What he says is, कि जो विषय सुख हमको मिला है ना, ये विषय सुख तो फूटी कौड़ी के जैसा है, मतलब इट हैज नो वैल्यू। तो ये वाले विषय सुख के लिए जो कि नो वैल्यू, ऑलमोस्ट नो वैल्यू, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट का विषय सुख है, उसके लिए जो भव दुख का कर्ज लेता है, मतलब ही इज टेकिंग लोन, तो वर्तमान थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए जो बहुत सारे आगामी भवों के कर्म के बंधन का लोन लेता है, वो ये बात समझ ले कि ये जो कर्म बंध का लोन है, इसमें से एक रुपए भी माफ नहीं होता, इसको पूरा चुकाना पड़ता है। देयर इज नो रिबेटमेंट, वॉट एवर आपके पास आज जो कर्म आ रहे हैं, जो वर्तमान में हम राग द्वेष के उदय में और पांच इंद्रिय के विषयों का जो पुण्य पाप के उदय से हमको संपर्क हुआ, संयोग मिला, इसकी वैल्यू इज नेग्लिजिबल, क्योंकि ये तो सुख भी नहीं है, ये तो एक इल्यूजन है कि इसमें सुख है, एक सुख का बस एक भ्रम है। इस नेग्लिजिबल सुख के लिए जो भव दुख के कर्ज को, लोन को लेते हैं, वो अभी नहीं समझ रहे, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि एक रुपए भी, मतलब पाई पाई चुकानी पड़ेगी, देयर वुड बी नो यू नो कि कोई वेव ऑफ कर दे थोड़ा सा लोन के, ठीक है चलो अब इतने रुपए कम दे देना, कर्मों के साथ ये वाली चीज नहीं चलती है। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी पुअर पर्सन हु इज टेकिंग लोन हैप्पीली। लोन इज नथिंग, इफ यू आर टेकिंग लोन इज नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, क्योंकि लोन आप हैप्पी होके कैसे ले सकते हो? सिमिलरली राग द्वेष आप खुश होके कैसे कर सकते हो? आप उसको सुख का कारण मानकर कैसे कर सकते हो? ये वाली बात आश्रय तत्व संबंधी भूल में आती है। हाउ कैन यू आप अपनी ही बोट पर होल्स बनाकर खुश कैसे हो सकते हो? ये आश्रव की भूल है। और जब हम इस भूल को कमिट करते हैं तो बंद हो जाता है, ठीक है?
हाँ।
तो बंद को क्या बोला, जीव प्रदेश बंध है, विधि सौ सो बंधन कबहू न सजिए। ये जो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग हैं, जब ये जीव इनके बारे में बहुत ध्यान देता है और इनको दुख का कारण नहीं जानता और इनको नहीं छोड़ता, तो क्या होता है कि आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना होता है, कर्म बंध वहां पर होता है। वो बंध चार प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये चार प्रकार के जब बंध की फॉर्मेशन होती है तो ये आत्मा उस बंध से सज जाता है, मतलब बोट के अंदर अब पानी भर गया है एंड नाउ इट्स अ डेंजर लेवल, प्रॉब्लम है। इसके लिए हमको बंधन से कभी भी नहीं सजना चाहिए, ठीक है? राइट आश्रव के कारण बंध है, इसलिए आश्रव बंध का एक पेयर बनेगा। बट आश्रव को बंध से क्यों डिफ्रेंशिएट किया फिर, कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कर्म आए और रुके नहीं, इसलिए आश्रव हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम बंध। सो ऑल दैट इज आश्रव इजंट बैड, मतलब ऐसा है कि आश्रव हमेशा ही हमको इफेक्ट करे नहीं। केवली भगवान के भी आश्रव है बट उनके कुछ मतलब नहीं रहा क्योंकि उनके घातिया कर्मों का अभाव हो गया, मतलब मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है। बट यदि आश्रव होकर उस आश्रव में सुख बुद्धि है तो फिर वहां पर डेंजर लेवल है और वो बंध में ट्रांसलेट होगा ही, और हमको ऐसे बंध से कभी नहीं सजना चाहिए, ठीक है?
हाँ।
ओके। देखिए यदि ये व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है, जो तीसरी ढाल है ना, ये सम्यक दर्शन की ढाल है, राइट? और निश्चय सम्यक दर्शन तो बोल दिया था कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, तो उसमें फिर आत्मा का सुख बताने के लिए फिर मोक्ष मार्ग दो बताए, फिर बोला निश्चय और फिर व्यवहार, और फिर आप रूप को जानपनो या सम्यक ज्ञान कला है। आत्म को जब अपनी रुचि होती है, समय निश्चय सम्यक दर्शन था तो क्वेश्चन हुआ कि व्यवहार क्या है, तो उन्होंने बोला कि सात तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। और अब उसमें एक एक तत्व के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं कि इस तत्व का क्या करो क्या नहीं करो। जीव अजीव में अपने आप को जीव देखो, अजीव रूप नहीं देखो। आश्रव में ये दुख के कारण है, इनको सुख का कारण मत देखो। बंध में बंध यानी के कर्मों का बंध आपसे सजेगा, इस कर्म के बंधन से अपना श्रृंगार मत करो। ये पंडित दौलत राम जी एक एक तत्व का स्वरूप भी बता रहे हैं और हमको उसमें एक एक सीख भी देते जा रहे हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है? बंध तत्व संबंधी भूल क्या करता है जीव? बंध तत्व संबंधी क्या भूल है?
आश्रम से जो जो हमको जो कर्म के फल में जो हमको मिलता है उसको हम
बराबर बराबर एक्सेलेंट, ठीक है? आश्रव तत्व में ये भूल थी कि जो मोह राग द्वेष प्रगट में मुझे परेशान कर रहे हैं, आकुलित कर रहे हैं, मैं उनको ही सुख का कारण मानकर उनकी सेवा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो शायद मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं यदि लोगों से लोगों को पागल बना पाऊंगा तो मेरे हेलो सॉरी यस सो इसको करते हुए मूल राग द्वेष से हम प्रगट में आकुलित हैं, हम उनको करते हुए मानते हैं कि हम सही कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एवरीथिंग राइट। ठीक है, ये आश्रव से संबंधित भूल थी, मतलब मोह राग द्वेष करना इतनी अकेली भूल नहीं है, वो तो सम्यक दृष्टि जीव भी कर लेते हैं राग द्वेष, मोह नहीं होता उनके, बट राग द्वेष तो सम्यक दृष्टि जीव भी कर लेते हैं। हेलो हेलो
उसको अच्छे नहीं लगते,
वो उनको रोग जैसा मानता है, वो उनसे भेद ज्ञान करके रखता है, वो उनमें उसकी सुख बुद्धि नहीं है, उसकी उनमें हेय बुद्धि है, उसकी भेद विज्ञान हमेशा चालू है। तो भूल क्या है कि जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण मान लेना, ये तो टेरिबल मिस्टेक हो गई। दुख के कारण को दुख का कारण मानकर करना कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं।
देखिए दवाई को दवाई मानकर खाऊं ठीक है, कोई बात नहीं, दवाई को मैं खाना मानकर अच्छा मानकर रोज खाने लगूं, देयर इज अ प्रॉब्लम। ऐसे ही किसी भी आवाज आ रही है मेरी?
हाँ आ रही है, मैं एक मिनट देखती हूँ। हाँ अब आप बोलिए।
हाँ हाँ ठीक है, तो ये तो मतलब जो हमारे लिए अहितकारी है हमने उसमें सुख बुद्धि करी, ये तो हो गई आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्योंकि भूल इज अ बिट डिफरेंट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। आश्रव में आपने क्या
सुख रूप लगे,
आश्रव में आप पानी आपने नाव के अंदर बुलाया था, तो आश्रव का रिजल्ट क्या निकला, कर्म का बंध। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आश्रव इज बंध। ठीक है, अच्छा बंध हुआ है कर्म का, तो कर्म का क्या आएगा,
फल,
कर्म का उदय आएगा, फल आएगा, राइट। वो फल कैसा होगा, दो तरीके से होगा, पुण्य रूप होगा या पाप रूप होगा, पुण्योदय या पाप उदय।
ડ્રોપ ઓફ થઈ ગયા લાગે છે, રાઈટ?
હા હા ડ્રોપ ઓફ થઈ ગયા છે, આવશે પ્રીતિબેન તમે જવાબ આપતા જાઓ, મને તો બધું આવડતું, તમે પણ વચ્ચે જવાબ આપતા જાઓ,
ઓકે તમે જવાબ આપો છો એટલે હું જરા શાંતિ રાખું છું, યા વાંધો નહીં,
સમટાઈમ્સ આઈ ડોન્ટ ઈવન નો કે શું જવાબ આપો। ઉષાબેન તમે ઈચ્છો, ઉષાબેન તમે પણ જવાબ આપતા જાઓ।
એમને પણ ખબર હશે કે ડ્રોપ ઓફ થઈ ગયા છે કે
નો ડ્રોપ, એટલે કે એને મેસેજ સચિનભાઈ એમને કયો હિઝ ડ્રોપ કે સચિનભાઈ
છે ખરા, કારણ કે બહાર હતા
નથી દેખાતા, ના હવે નથી દેખાતા સચિનભાઈ, પેલા તો હતા પણ નથી, ઓકે આવી ગયા, ઇઝ બેક,
સોરી तो आश्रव से तो हमने कर्म बांधे, बट कर्म का जो बंधन हुआ वो उदय को लेके आएगा, और वो उदय दो प्रकार का होगा, या तो पुण्योदय होगा या पाप उदय। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि कर्मों के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, और एक प्रकार का कर्म तो ऐसा है कि उसका हमेशा भी उदय चलता रहेगा, जो आयु कर्म है, अभी हमारी मनुष्य आयु चल रही है तो उसका उदय बदलता नहीं है, अभी बदलेगा नहीं कि मनुष्य आयु कम हो जाए मनुष्य आयु ज्यादा हो जाए, ये रहेगा कि जितनी है आयु उतनी खत्म हो जाएगी, बस हो गई बात, दूसरी आयु शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली 7 कर्म हमारे लिए भी देखने जैसे हैं। आयु कर्म तो ठीक है, वो तो उदय में चल ही रहा है। ठीक है, हेलो,
हाँ हाँ ठीक है,
ठीक है, हाँ। तो 7 में से 4 कर्म तो घातिया कर्म है, जैसे कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ठीक है, इन 4 कर्मों में पुण्य पाप के भेद नहीं होते। इन 4 कर्मों में, यदि इन 4 कर्मों का उदय है तो मेरे पुण्य के उदय से ज्ञानवर्णी चल रहा है, पाप के उदय से चल रहा है, नहीं, इसमें पुण्य पाप के भेद नहीं होते। ये 4 कर्म तो यदि उदय में है मतलब पाप रूप ही है, ये पाप का ही उदय है यदि ये 4 कर्म उदय में है तो। ठीक है,
हाँ।
तो बचे 3 कर्म, कौन कौन से? वेदनीय, नाम और गोत्र।
गोत्र,
ठीक है, गोत्र भी ऐसे इसमें इतने इतने जल्दी इसमें चेंजेस देखने नहीं मिलते, जो है उच्च गोत्र वाला उच्च गोत्र में ही दिखता है मेजॉरिटी, जो नीच गोत्र वाला है वो नीच गोत्र में ही दिखता है, तो गोत्र में भी वी कैन नॉट डू मच, राइट, तो उसको भी जाने देते हैं। अब बचे 2, नाम कर्म और वेदनीय कर्म। नाम कर्म यानी कि शरीर कृत जो जो भी हमारी चीजें होती हैं, आवाज खराब हो जाए किसी की, आवाज फनी आने लगे, राइट, वो बोले और कुछ अजीब सी आवाज आए, मे बी उसको देखने से उसके बॉडी से कुछ अलग तरीके की स्मेल आने लगे, कुछ भी, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स टू आवर बॉडी जो कि ओवर द टाइम वी कैन डेवलप, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम है वेदना की, इसको बुखार बहुत रहता है, मानसिक वेदना बहुत है, सोचता बहुत रहता है, तो ये होता है वेदनीय। तो बेसिकली ये 2 कर्म हैं जिसमें पुण्य और पाप का आरोप लागू पड़ता है, और ये दोनों कर्म हमेशा बहुत दूर की वस्तुओं में होते हैं, या तो शरीर में है या शरीर से संबंधित और आगे की जगह पर, घर है या फिर उसके, हाँ, उसके बिजनेस में लॉस हो गया, उसके वहां पर आग लग गई, तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन वेरी आउटसाइड ऑफ दी परव्यू ऑफ द सोल, राइट, आत्मा के बहुत बाहर होता है इसका जो भी काम होता है। तो एक तो ये पुण्य और पाप जिस पर हम प्रिडोमिनेंटली अपनी आंखें रखते हैं, नजर रखते हैं कि मेरा पुण्य और पाप का उदय चल रहा है, ये एक तो आत्मा से बहुत दूर किसी तीसरे द्रव्य में होता है, बहुत दूर, यू नो, इट्स लाइक हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब गिरा है और भारत के लोग यहाँ पर परेशान हो गए, बट देर इज नो सेंस वहां पर, आपको यदि ये है कि आपको वार्निंग मिली है कि भारत में भी गिरेगा, देन यू बेटर बी वरीड अबाउट इट, बट नहीं तो आपको ना कुछ आवाज आई उसकी, यहाँ तक कुछ भी नहीं पहुंचा उसका, इट हैज हैपेंड सो फार, राइट। सिमिलरली यदि वेदनीय और नाम कर्म के उदय के कारण आत्मा परेशान है तो देर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो आत्मा के आसपास किसी टेरिटरी में हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी अब हम बंध तत्व पर आते हैं, सो दिस इज द बैकग्राउंड, हम पहले समझ लें कि ये जितना भी होगा पुण्य पाप का चक्कर, ये तो बहुत दूर होगा, जो आत्मा में हो रहा है वो पाप ही हो रहा है, उसका केवल ज्ञान स्वभाव है, वो नहीं हो पा रहा उदय में, उसके पास अनंत वीर की शक्ति है वो उदय में नहीं आ रही अंतराय के कारण, उसके पास अनंत सुख स्वभाव है लेकिन वो दर्शन मोह और चारित्र मोह के कारण उसका कुछ अता पता नहीं, वो वीतराग स्वभाव वाला है लेकिन वो राग द्वेष के झमेले में पड़ा हुआ है, तो बेसिकली जो पाप रूप है उस पर तो उसका ध्यान है ही नहीं क्योंकि उसको आश्रव तत्व संबंधी भूल है, तो तो आश्रव तत्व संबंधी भूल ने उसके घातिया कर्म की पूरी स्टोरी को बदल के रखा है, ठीक है। जो घातिया तत्व संबंधी उदय हैं, वो वर्तमान में मोह राग द्वेष रूप होंगे, चारित्र मोह के उदय में क्रोध होगा, दर्शन मोह के उदय में मोह होगा, राइट।
हाँ।
तो इनको तो आश्रव तत्व ने इसके आंखों में एक पर्दा डाल दिया और बोल दिया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, हमको तो यही करना चाहिए और अच्छे से करो, द बेटर यू विल बी। तो आश्रव तत्व ने घातिया कर्म के उदय को तो अच्छा नाम देकर ढक दिया, जो कि वास्तविकता में पाप का उदय था। तो वो तो पाप का उदय गिना नहीं जाता, राइट। वो तो लगता ही नहीं कि यार मुझे आज क्रोध आ रहा है, मतलब मेरे पाप का उदय है, या मेरे परिणाम इतने क्यों बिगड़ रहे हैं, शुड आई नॉट टेक चार्ज ऑफ माई ओन परिणाम, ये वाले परिणाम, क्योंकि हम जागृत ही नहीं है। जैसे परिणाम होते हैं हम बिल्कुल आंख बंद करके वैसा बिहेव करने लगते हैं, राइट। क्योंकि आश्रव तत्व संबंधी भूल बोल रही है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई बात नहीं। अब बचे ये दो कर्म जो प्रीडोमिनेंटली हमको दिखते हैं। एक तो बॉडी में क्या हो रहा है वो दिखता है कि मैं सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, क्या हूँ, मेरे बाल अभी खराब होने लगे, दे आर टर्निंग वाइट, तो एवरीथिंग, वो नाम कर्म और वेदनीय कर्म कि मुझे कितनी वेदना है, कितने रोग हैं, कितनी परेशानी तकलीफ है, राइट। अब
हाँ।
अब प्रॉब्लम ये होगी, हम वापस उस एग्जांपल पर जाते हैं कि जब वो गरीब आदमी लोन ले रहा था तो लोन लेते टाइम वो क्या था, हैप्पी था, हैप्पी था, ठीक है, अच्छी बात है। अब उस लोन को चुकाने का टाइम आया, राइट नाउ द टाइम फॉर रीपेमेंट हैज स्टार्टेड, एंड नाउ अब वो रो रहा है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, हाउ विल आई एवर रीपे, मैं कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊंगा और चुकाऊंगा। तो सी, यदि आप अभी रो रहे हो देन यू आर स्टूपिड, क्योंकि आपने ही तो लिया है ये लोन, कोई दूसरे ने तो नहीं लिया।
हाँ।
तो अब उसको लोन देना पड़ रहा है, हम उसका क्या बोले, पाप का उदय बोले उसका कि उसको लोन देना पड़ रहा है। इज इट अ पाप का उदय कि वो लोन दे रहा है वापस? नो, पाप को आप क्यों बदनाम कर रहे हो, उसने लिया था तो उसको देना है, दिस इज नॉर्मल मॉरल साइंस, यू टुक इट फ्रॉम मी, यू गिव इट बैक टू मी। इसमें पुण्य का उदय और पाप का उदय कहां से आ गया?
नहीं, हाँ।
आप यदि लोन लेते हो बैंक से तो पुण्य के उदय में लोन नहीं मिलता, यू आर कॉन्शियसली टेकिंग इट। आप जब रीपे कर रहे हो तो आप कोई एहसान या पाप का उदय नहीं उतार रहे हो अपना, यू टुक इट, यू आर रीपेइंग इट, दैट्स अ ट्रांजेक्शन। वो एक ट्रांजेक्शन है, उसका पुण्य पाप से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब वो लोन रीपेमेंट के टाइम पर रोने लगे और बोले हाय क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, किसी को बुरा भी नहीं बोला कभी, किसी का बिगाड़ा भी नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं पूरे लाइफ टाइम, आई ऑलवेज थॉट फॉर एवरीबॉडी इज गुड, ऑल दिस इज नॉनसेंस।
हम बोलेंगे नॉनसेंस, कर लेना था ना लोन।
वही नॉनसेंस है ये, अरे आप किसी को कुछ मत बोलो, हु इज क्वेश्चनिंग यू, ठीक है आपने अच्छे से लाइफ किया, आप बहुत अच्छे हैं, आप किसी की बात नहीं बिगाड़ते, बट लोन नहीं लेना था ना आपको, लोन तो आपने लिया है ना, जस्ट बिकॉज आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया डजंट मीन कि आप उसको आपको पैसे वापस नहीं करने हैं। इसमें उसकी क्या गलती कि उसने आपको पैसे दिए, आपने किसी का अच्छा बुरा नहीं किया। तो जो लोन लिया है उसको चुकाने के टाइम पर रोना या हंसना, ये जैसे पागलपन है वैसे ही पूर्व में बांधे हुए कर्म का वर्तमान में उदय आए, उसके भोगने में रोना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या हंसना कि कितना अच्छा हो रहा है, ये दोनों पागलपन है, ये बंध तत्व संबंधी भूल है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। तो देखो जो आश्रव है दैट डील्स विद द प्रेजेंट, और जो बंध है दैट डील्स विद द पास्ट एंड द फ्यूचर। क्या होगा इसमें, आपको वर्तमान में जो उदय आएगा वो वर्तमान के कर्म के कारण नहीं आएगा, पूर्व में बांधे गए कर्म के कारण उदय आएगा, बराबर। पुराने कर्म का उदय आता है, नए कर्म का बंद होता है, करेक्ट।
हाँ।
राइट। तो जो बंध तत्व में भूल होगी वो दो तरीके से होगी, एक तो क्यों हुई, क्योंकि पुराने कर्म का उदय आया, क्या आया कि मेरे साथ आज अच्छा हो गया, तो व्हाट डिड आई डू, चलो पार्टी करते हैं, तो आई वेंट फॉर अ पार्टी। तो पूर्व कर्म के उदय में तो वो अच्छा काम हुआ जो भी हुआ, फर्स्ट तो इट्स नॉट अच्छा और बुरा काम, ये तो जो लोन था वो रीपेमेंट का टाइम, इसमें क्या अच्छा बुरा, बट मानते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इष्टनिष्ठ की मिथ्या कल्पना। ठीक है, कर्मों में पाप पुण्य के भेद ये हमारी मान्यता के कारण पड़े हैं, कर्म का उदय तो जो है सो है, राइट, व्हाट यू साइन अप फॉर दैट्स व्हाट यू गेट, तो उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपनी इष्टनिष्ठ की मिथ्या कल्पना के कारण इनमें भी डिस्टिंक्शन किए गए हैं कि ये वाली जाति के कर्मों में प्रिडोमिनेंटली मोस्ट जीव दुखी रहते हैं, जैसे नरक गति दुख का कारण नहीं है, राजा श्रेणिक भी वहां पर है, थोड़ी बहुत वेदना होती होगी, बिल्कुल होती होगी, जितनी मारकाट वहां लगी है, उनके जितने कषाय का उदय है अप्रत्याख्यानावरण से लेकर तीन कषाय संबंधी, उतनी आकुलता उनको होती होगी, बट जिनके पास भेद ज्ञान है वो बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर उसी टाइम वो वहां पर सुख का अनुभव कर सकते कि नहीं कर सकते,
कर सकते,
कर सकते। इतना पक्का हुआ कि नरक गति का उदय भी दुख का कारण नहीं है, यस और नो? तो फिर नरक गति को दुख वाली गति क्यों बोला, कि इसलिए बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जीव जो नरक गति में रहते हैं वो दुखी होते हैं उन संयोगों के कारण, तो मेजॉरिटी के कारण जनरलाइज कर दिया गया कि हाँ नरक गति में दुख है, लेकिन नरक गति में गति दुख का कारण नहीं है, वहां भी दुख का कारण ये आश्रव तत्व संबंधी भूल के कारण, वर्तमान का मोह राग द्वेष का परिणाम, ये जो अच्छा लगता है, ये जो अच्छा लगने वाला परिणाम है ये दुख का कारण है, बाहर का संयोग दुख का कारण नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी कर्म के उदय हैं उनमें अच्छा और बुरा, इष्ट और अनिष्ट, पुण्य और पाप, ये मेजॉरिटी जीवों की अपेक्षा जनरलाइज्ड कथन है, बाकी अच्छा बुरा कुछ नहीं है, यू टोक अ लोन यू आर रिपेइंग इट, इसमें अच्छे बुरे का कोई सवाल ही नहीं है, राइट? करेक्ट। इसलिए जो वर्तमान में पूर्व कर्म का उदय आया है उसमें यदि राग द्वेष करेगा तो क्या होगा, आगामी के कर्म को वापस बांध लेगा। ठीक है, बंध क्या था कि कर्मों का बंधना, नाव में क्या हो रहा था, पानी आकर रुक रहा था, तो आपको ये जानकर कि पानी आकर रुक रहा है आपको करना तो ये चाहिए था कि आप एक जल्दी से बर्तन उठाएं और उसमें पानी भरे और पानी को बाहर फेंकें, आपने गड्ढा बंद कर दिया, राइट, वो जो होल हो गया उसको बंद कर दिया, आइडियली यू शुड हैव थ्रोन आउट व्हाट द वाटर वाज, तो आपने अब क्या किया, आपने वो बर्तन तो उठा लिया, दैट वेसल यू हैव पिक्ड अप, बट आप क्या कर रहे हो कि बाहर नदी में पानी भर रहे हो और बोट के अंदर डाल रहे हो, नाउ दैट स्टूपिड, ये भूल है। बंध तत्व को जानने का काम ये था, पानी भर रहा है इसको जानने का काम ये था कि आप भरे हुए पानी को बाहर फेंको, ना कि भरे हुए पानी को और बढ़ाओ। जैसे ही हम पुण्य के उदय में खुशी मनाते हैं तो उस जाति के रौद्र परिणाम वाले कर्मों का यहाँ बंध होने लगता है, और हम पाप के उदय में विषाद करते हैं तो उसी जाति के पाप का बंध और होने लगता है। देखो दो तरीके से साइंस चलेगी है, आपको जिस पुण्य के उदय में खुशी हो रही है उसमें खुशी मनाने से पुण्य के प्रति तो अंतराय बंधता है, उसके उदय में तो कमी आती है, राइट? पुण्य के उदय में हर्ष मानने से जिस विषय में हर्ष मान रहे हैं उस विषय संबंधी तो अंतराय का बंध होता है, उस विषय संबंधी तो हमसे वो वस्तु वो दूर जाती है, और पाप के उदय में हम, जिसके उदय में हम विषाद बनाते हैं, पाप मानते हैं, बुरा रोते हैं गाते हैं, तो जितना आप पाप के उदय में दुखी होते हो उसी जाति के कर्म और उतने बनते हैं। सिंपल, हेडेक हो रहा है, मैं हेडेक से परेशान हो रहा हूँ, तो हेडेक वाले कर्म और बन रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, मैं पैसे से खुश हो रहा हूँ, पैसे के नहीं आने वाले कर्म और बनेंगे, अंतराय वाले। ठीक है,
वो एक एकदम मुझे समझ में नहीं आया, अंतराय वाले कर्म बंद रहे हैं।
इट्स लाइक सिंपल, आपने किसी वस्तु की इच्छा करी, यू आपने डिजायर करी किसी चीज की कि ये मिलेगी तो अच्छा होगा, एट दैट टाइम इटसेल्फ वो वाली चीज के प्रति अंतराय बन गया। मतलब यदि वो आपको 2 साल में मिल सकती थी, नाउ इट विल रीच यू इन 3 इयर्स, डिले हो जाता है अंतराय। इसको श्रीमद राजचंद जी ने लिखा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करके सुख जाता दूर है, द मोर यू ट्राई टू बी हैप्पी द मोर अनहैप्पी यू बिकम। ठीक है, तो ये बंध तत्व में ये बोल रहे हैं कि 4 प्रकार का बंध है, ये बंध बुरा है और आत्मा को बांधता है, इसलिए इस बंधन से मत सजो। पूर्व कर्म के उदय को साम्य भाव से सहकर उदय में निकल जाने दो, उदय होकर खिल जाने दो, और नवीन कर्म को मत बांधो, तो धीरे धीरे करके ये आत्मा कर्म रहित हो जाएगा। ठीक है,
हाँ जी,
ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस
नहीं?
ठीक है, तो अभी के लिए हम डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं। बंध तत्व तक पूरा डिस्कशन हो गया, संवर और निर्जरा को हम साथ में करेंगे, तो आश्रव और संवर का कपल बनेगा और बंध और निर्जरा का, तो हम इन दोनों को नेक्स्ट में, 2 लाइन्स हम नेक्स्ट में हो जाएगा। ये अब आश्रव बंध हो गया है तो संवर निर्जरा इज इजी नाउ। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग सोच सकते हो, फिर पूछ सकते हो। ठीक है,
थैंक यू।
ओके, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जवानी के ज्ञान से तुझे लो कालो, सुभानी मस्तक नमो सदा चेत हूँ तो। 9 बार नमो कार मंत्र।
थैंक यू अनुभव जी, जय जिनेन्द्र।
थैंक यू अनुभव। वैसे है अब टोटल वी आर 9 पीपल, मगर दूसरे बोलते नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम ही है।
ओके ओके, ठीक है ठीक है,
हाँ, ओके, जय जिनेन्द्र।